नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी में सेवा तीर्थ पवन भवन परिसर के नाम पट्टिका का अनावरण किया। प्रधानमंत्री आज शाम सेवा तीर्थ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यह उद्घाटन देश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। एक रिपोर्ट।
सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय स्थित हैं, जो पहले अलग अलग स्थानों से कार्यरत थे। यह नया भवन परिसर प्रशासनिक कार्यों को आधुनिक और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाओं के साथ एक ही स्थान पर समाहित करता है। दोनों भवन परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, सुव्यवस्थित सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र और केंद्रीकृत स्वागत सुविधाएं मौजूद हैं। ये सुविधाएं सहयोग, दक्षता, सुचारू संचालन, नागरिकों की बेहतर भागीदारी और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देंगी। भानु प्रताप सिंह के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सेवा तीर्थ प्रणाली अपनाने के बाद लिए गए अपने पहले निर्णयों में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राहत योजना को मंजूरी दी है। इस निर्णय में लखपति दीदियों के लक्ष्य को दोगुना करके 6 करोड़ रुपए, कृषि बुनियादी ढांचा कोष को दोगुना करके 2 लाख करोड़ रुपए और स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को 10,000 करोड़ रुपए की निधि की मंजूरी दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 9 मार्च को बजट सत्र के दूसरे चरण में बैठक फिर से शुरू होगी। बजट सत्र का पहला चरण पिछले महीने की 28 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। दो चरणों में आयोजित बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए मूल प्रस्ताव पर अध्यक्ष से चर्चा के बाद तय किया जाएगा कि इसे विशेषाधिकार समिति या आचार समिति को भेजा जाए या सीधे सदन में चर्चा के लिए लाया जाए। श्री रिजिजू ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि श्री निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए मूल प्रस्ताव के बाद सरकार ने फिलहाल विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्तावित प्रस्ताव को सदन में न लाने का फैसला किया है।
राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना और साथ में बजट स्पीच में भी अनाप शनाप बातें की, बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं, एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी।
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश में कोडिन कफ सीरप के सेवन से मौत की कोई घटना सामने नहीं आई है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्री नड्डा ने कहा कि जब भी किसी दवा से संबंधित मौत का मामला सामने आता है तो सरकार तुरंत जांच का आदेश देती है। उन्होंने कहा कि दवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सुस्थापित नियामक प्रक्रिया लागू है जिसका सरकार सख्ती से पालन कर रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने 13वें आम चुनाव में शानदार जीत हासिल करते हुए 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। बीएनपी और इसके सहयोगी अब तक घोषित 284 सीटों में से 208 में आगे चल रहे हैं। यह लगभग 2 दशक के बाद निर्णायक जनादेश का संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री तारिक रहमान को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत उनके नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता के विश्वास को दर्शाता है और एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि करती है। चुनाव आयोग ने कहा कि संसदीय चुनाव और साथ ही हुए जनमत संग्रह में मतदान प्रतिशत 59.44% रहा। दोनों चुनाव 299 निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। आज विश्व रेडियो दिवस है। लोगों में रेडियो के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के जरिए सूचना पाने को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय है रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिल्ली में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कनाडा ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 95 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।